गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने कृपा की, सानू ए मनुखा देही प्रदान की, जिथे गुरु परमेश्वर की कृपा नाल मनुखा देही मिली, उथे गरीब निवाज ने अपनी संगत की दात बख्श दिती, ते जिस गुरु की रहमत नाल आपां हजूर दे चरणा विच इकत्र होए बैठे हां, अज धन गुरु हर राय साहिब सच्चे पातशाह सतवें गुरुदेव जी का पावन आगमन पुरब भी है, और अज दे दिन ही आपां इस अस्थान ते जितना समा मिलिया उस अनुसार गुरुदेव जी दी इलाही बाणी शलोक सहस्कृति इन्हां दी विचार आरंभनी। पहला जो पावन पवित्र शलोक आप जी ने अज सरवण कीता है, इस शलोक दे उचारण करता ने सतगुरु गुरु नानक साहिब जी महाराज। ये शलोक गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर दो वरी आया है, एक ता अमृत वेले जदों आपां आसा दीवार दा कीर्तन सरवण करने हां, आसा दीवार विच भी ये पावन पवित्र शलोक है, और शलोक सहस्कृति दे आरंभता दा पहला शलोक भी ए वे। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी ने इस पावन पवित्र शलोक दे अंदर उन्हां बाहर दे पखंडां दा कर्म कांडां दा खंडन कीता है कि जिदे नाल केवल बाहर दी देख, बाहर दा पहरावा, बाहर दा जितना भी अडंबर है वह धर्मियां वाला प्रतीत होवे, ते अंदर धर्म नां दा किनका भी ना होवे, ते धन गुरु नानक साहिब जी इहो जिहे अडंबर नूं परवाह नहीं करते। सतगुरु ने कृपा करके बचन कीता, कहन लगे कि विद्वान पंडित, पर मैं एक अर्ज करा, जदों भी गुरदेव दी बाणी पढ़िए, भावां वह किसे जोगी नूं, किसे काजी नूं, किसे पंडित नूं, किसे मुल्ला नूं, जां किसे पर्वत नूं संबोधन कीती होवे, पर एक गल ध्यान मन विच रख के तुरनी है कि असल विच मेरा गुरु नानक बाबा ए उपदेश मैनू पिया करदा है। कई बार आपां अपने आप नूं वाह कर जाने हां, ये गल तां सतगुरु ने एक पंडित नूं कह दित्ती, नहीं साहब इत्थे कह रहे ने कि विद्वान पंडित तू अपनी कुल इतनी कु अकल रखना, तू वेदां दा पाठ भी करना, शास्त्रां दा पाठ भी करना, सिमरतियां दा पाठ भी तू करना, तू नेत्र मुंद के अखां बंद करके समाधि भी ला के बैठना, अपने मत्थे दे उपर तू तिलक भी लाया, जबान तो झूठ नूं इस ढंग नाल दुनिया विच पेश करना कि लोग तेरे झूठे बोलां नूं भी सच करके मंदे ने, पर ध्यान रखी इन्हां कर्मकांडां दे नाल प्रभु दी प्राप्ति नहीं, वाहगुरु जी दी प्राप्ति केवल श्रद्धा दे नाल गुरु के चरणां विच जुड़ के प्रभु दी भगती नाल होनी, होर कोई साधन नहीं। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृतमई बाणी पढ़ने हां, ते जदों इस शलोक नूं पढ़ने हां, हजूर ए नहीं कहिंदे कि पढ़ो ना, जिमें ते शब्द वरते है पढ़ पुस्तक संध्या बादंग, पहला शब्द ये क्या है, अखर ये ने तू पुस्तक पढ़ने, तू ग्रंथ पढ़ने, ग्रंथ पढ़ने पुस्तक पढ़निया कोई माड़ी बात नहीं, केवल पुस्तक पढ़ के ए हंकारी हो जाए मेरे कुल इन्ना को ज्ञान है, जिथे कोई मनुख मिले ओदे नाल चर्चा आरंभ देवे, जे केवल वाद विवाद नहीं पढ़ रहे हैं, ते हजूर कहिंदे ने इस पढ़े हुए नाल कदी कमाई थाए नहीं पैंदी, पढ़ना माड़ी बात नहीं, पर पढ़ना किवें में, हजूर ने बचन कीता, कहन लगे पढ़ दे सारे ने, पर क्या पढ़ी है, क्या गुनी है, क्या वेद पुराना सुनिए, साहब ने पढ़न दी गल कही, कहन लगे पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले हो सोई, पढ़ ते सुनदा की लाभ जे अंदर टिकाऊ नहीं मिलिया, ते साहब कहने पढ़ रोज लेना है के नाम जपना चाहिदा है, सिमरन करना चाहिदा है, पर हजूर कहिंदे ने हर का नाम ना जप सगावारा क्या सोचें बारंग बारा पढ़ के केवल सोच हरना के नाम जपना चाहिए पर जपदा ते नहीं ना फिर एहो जे पढ़न दा की लाभ होया। सतगुरु की बाणी विच ही परमान ने गुरु अर्जन साहब जी दा पवित्र बचन आंदा राग सोरत दी अष्टपदी साहब कहिंदे ने पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो पढ़ना भी है उन्हां दी विचार भी करने पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो नेवल भुयंगम साधे पंच जना सो संग ना छुटको अधिक अहंग बुद्ध बाधे। साहब कहिंदे ने पढ़ लिया पर अंक हंकार वाली बिरती तां होर प्रफुल्लत हो गई पर याद रखी प्यारे इन विद मिलन ना जाई ए कोई तरीका नहीं के केवल पुस्तकां पढ़ के चर्चा करी जाए प्यारे इन विद मिलन ना जाई मैं किए कर्म अनेका बस इको टांगी जे प्रीतम नू मिलनी ते बेनती कर दे हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका तेरे चरणा विच डिगा मेरे मालक तू मेनू ओ सुमत दे जिदे नाल तेरे नाम नाल जुड़ जावा। सतगुरु ने बाणी विच एक नहीं बेअंत प्रमाण दिते ने पढ़न दे संबंध विच रामकली राग विच गुरु अर्जन पिता जी का एक बचन हुंदा है ते गुरु ग्रंथ साहब जी का अंक 887 साहब श्री गुरु अर्जन देव कहिंदे ने पढ़ भी लेना ते पढ़ के अर्थ भी कर देने ये भी कोई वड्डी बात नहीं। साहब कहिंदे ने विद्वान सज्जन पढ़ते ने पढ़ के उन्हां दे टीके नाल अर्थ भी कर देंदे ने। हजूर ने उदाहरण दिती कहन लगे एक विद्वान सज्जन पंडित बैठा संबोधन पंडित नूं कीता कहन लगे अगे पत्थर दी मूर्ति रखी है साल ग्राम ही लोगां नूं वेदां दा टीका पढ़ पढ़ के अर्थ कर करके सुनांदा है पर हैरानगी दी बात एवे के दुनिया नूं पढ़ के सुना रहा है पर आप पढ़ के सुनाया होया जीवन विच कदी कमा के देखिया नहीं। साहब कहन लगे पंडित कदी हिरदे दे क्रोध नूं तू खत्म कीता है दुनिया नूं कह देना के क्रोध खून नूं साड़दा है क्रोध रब तो वित पांदा है पर तू ता ग्रंथ पढ़ के क्रोध नूं छड्डिया नहीं तू कह देना के रब गरीब नवाज है दो धोतियां भी रखियां ने गले विच जन्यू भी पाया पर अमीर लोकां दे घर जाके तू पोथियां पढ़ना ते गरीब नूं अपने नेड़े कदी नूं तू ढुकन देंदा ते तेरे एहो जे पढ़न दा लाभ की होवेगा। सतगुरु ने प्रमाण दिता बाणी विच कहन लगे मुख ते पढ़ता टीका सहित एद अर्थ मुख तो अर्थ कर करके सुनाने हिरदय राम नहीं पूर्ण रहत हिरदे विच मेरा वाहगुरु ने टिकया ते जो कुछ दुनिया नू कहना ओ तू अपने जीवन विच ढालिया ने मुख ते पढ़ता टीका सहित हिरदय राम नहीं पूर्ण रहत उपदेश करे कर लोक दरड़ावे अपना कहया आप ना कमावे पंडित वेद विचार पंडित मन का क्रोध निवार पंडित साहब कहने आगा राख्यो साल ग्राम मन कीनो दै दिश विश्राम अगे तू रब दी मूर्त बना के राखी बैठा है पर तेरा अंदर वाला मनवा ता एक खिन भी कदी वाहगुरु दे चरणा विच जुड़िया नहीं। आगे राख्यो साल ग्राम मन कीनो दै दिश विश्राम साहब कहने तिलक चरावे पाई पाए साहब कहने लोक पचारा अंध कमाए खट करमा और आसन धोती तू छे तरह दे कर्म नहीं करने खट दर ते छे तरह दे कर्म ने विद्या पढ़नी विद्या पढ़ाउनी दो दान देना ते दान लेना चार जग करने ते जग कराने छे तरह दे तू कर्म नहीं करने खट करमा और आसन धोती तू अपने नाल आसन भी रखना जिस आसन ते बैठ के तू तिलक नाना धूप बत्ती करना पूजा करना खट करना और आसन धोती पर बदकिस्मती है के भागत ग्रह पढ़े नित पोथी भागत दर ते अमीर तू दौलत वाले दे घर भी जाके पोथियां पढ़ना माला फेरे एक पासे राम नाम जपना माला दे मनके ते हाथ रखना कहना राम साहब कहने मंगा विभूत मुख तो राम कहना पर अंदर जेड़ा ओ माया ने पकड़िया होया ए बिद कोए ना तरयो मीत हे मेरे मित्र इस तरह अज तिकरा कोई तरिया नहीं इस ढंग नाल तू तर नहीं सकदा। मेरे गुरु नानक साहब जी ने अज बचन ये कीते कहन लगे पढ़ना भी है संध्या भी करने तू पाठ पूजा भी दुखावे ली करने पर जे हिरदे विच मेरे वाहगुरु जी ली श्रद्धा नहीं ते गुरुली प्रेम नहीं कदी तू पार नहीं हो सकेगा। साध संगत गुरु ते किन्नी कु श्रद्धा चाहीदी है। मैं इस शब्द नाल अज गुरु हर राय साहब दे जीवन विचों भी कुछ अर्ज कर दिया, क्योंकि हजूर दा अज पावन पवित्र आगमन पुरब है। धन गुरु हर राय साहब जी का प्रकाश फरवरी 1630 नूं कीरतपुर साहब की धरती ते होया है। गुरु हरगोबिंद साहब जी दे पंज साहबजादे ने बाबा गुरदत्ता जी, बाबा अटल राय जी, बाबा अणी राय जी, बाबा सूरजमल जी, सब तो छोटे ने गुरु तेग बहादुर जी। बाबा गुरदत्ता जी दे घर अंदर दो पुत्र पैदा हुए, वड्डे दा नाम है बाबा धीरमल जी ते छोटे जिन्हां नूं आपां सतवें गुरदेव कहने आ, धन गुरु हर राय साहब जी। गुरु हरगोबिंद साहब जी दे पोते ने गुरु हर राय, बाबा गुरदत्ता जी दे पुत्र ने गुरु हर राय साहब। इन्हां दे पवित्र जीवन नूं पढ़ने आ। जे किते गुरु ते श्रद्धा बनानी होवे, पुछिए कि गुरु हर राय साहब जी, गुरु नानक जी की कृपा लैनी होवे ते की उदम करिए। सतगुरु दे जीवन विच घटनावां बहुत ने, मैं सिर्फ दो कु घटनावां दा जिक्र करना। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने गुरगद्दी देन तो पहला एक दिन बगीचे भी तुरदिया होया, जदों गुरु हर राय साहब जी दे चोले दे नाल एक सोहना महक नाल भरिया होया फुल बूटे नालों टुट के जमीन ते डिगा, ते मेरे गुरु हरगोबिंद साहब उस फुल दे कोल बैठ गए सन। पोते दे कपड़ियां नाल अड़ के टुटिया होया फुल कितना कु कृपालू मेरा गुरु वे। किते गुरु हरगोबिंद साहब दे जीवन नूं पढ़ो, ध्यान रखना। एक पासे मेरा गुरु दुष्ट दमन है, मेरा गुरु दल भंजा ने, एक पासे जालमां दे मुंह मोड़न वाला है, ते कोमलता इन्नी कुवे जे एक फुल भी बेदोषा टुट जाए ते मेरा गुरु हरगोबिंद साहब उस फुल नूं पकड़ के कितना समा देखदा रहिंदा है। फुल चुक के जमीन तो ये पुछया फुल टुटिया किस करके, ते उत्तर मिलिया सतगुरु तेरे पोते हर राय जी दे चोले नाल अड़ के फुल टुट गए। ते सतगुरु ने उखे ते एक तागीद कीती, कहन लगे पुत्र जे चोला वड्डा पाया होवे ते संकोच के तुरिए, वड्डे चोले पा के बेदोषे फुल्लां नूं उहनां दे बूटियां नालों तोड़ के खत्म नहीं करना चाहीदा। असल विच इक रमज सी कि पुत्र अज तू ए चोला पाया है, कल नूं गुरु नानक जी दे तख्त दा तू मालक बनना है, तेरे कोल इन्नी कु ताकत आ जानी है, देखी उस ताकत नाल उस समर्था दे नाल बेदोषे फुल टुट के किते जमीन ते डिग के बर्बाद ना हो जाए। धन गुरु हर राय साहब नूं एक सिख्या दित्ती, सारा जीवन कमा के रखी। कमाल दी बात, गुरु हर राय साहब जी दे जीवन विच बाणी ले किन्ना कु अदब है। अज गुरुदेव किन्ने कर्म कांड नाल नहीं, गुरु ते श्रद्धा बना ते सतगुरु पार कर दे। गुरु हर राय साहब दे घर दो सपुत्र पैदा हुए ने, वड्डे दा नाम है बाबा राम राय, छोटे ने सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी। बाबा राम राय नूं औरंगजेब दे सदे ते मेरे गुरुदेव ने दिल्ली भेजे। सिख इतिहास विच जिक्र है कि बाबा राम राय ने 72 करामातां दिखाईयां ने औरंगजेब नूं। सतगुरु ने कुछ नहीं कहा, दिखाई गए, पर जदों एक बचन आया गुरु नानक साहब जी दी बाणी दा, मौलवियां ने काजियां ने औरंगजेब नूं क्या कहन लगे, औरंगजेब तू राम राय तो ए पुछ कि जेड़ा गुरु नानक जी ने बचन कीता, मिट्टी मुसलमान की, पेड़ा पई कमियार, घर भांडे इटां कियां, जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे बपड़ी, झड़ झड़ पवे अंग्यार, एदा अर्थ की। किन्ने राम राय अजे तक ता करामातां दिखाई गया, पर जदो गल आई मिट्टी मुसलमान की, अंदर वाला मन डोल गया ते इको गल कह दिती, कहन लगा असल विच ता गुरु नानक जी ने मुसलमान नहीं, उते शब्द बेईमान वरते है, केवल लिखारी दी उकाई करके लिखारी दी गलती नाल इते मुसलमान लिखा गया। पर यह तुसी बड़ी वारी ते साखी बड़ी वारी सुनी। मैं जड़ी अर्ज करनी चाहना, मेरे गुरु नानक दी जोत नूं गुरु पुत्र ने दो वारी सत मारी जे। ध्यान रखना, एक वारी मेरे गुरु नानक दे शरीर नूं सत मारी ते एक वारी मेरे गुरु नानक दे खिरदे नूं सत मारी। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਧਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਨੇ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੱਟ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤ ਕੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਏ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੜਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਵੱਜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਠੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜ ਵਰਗੀਆਂ ਕਠੋਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਡਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਕੜਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਥਾਵੇਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆ ਨਾ ਕਹਿਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਪਿਆ ਪਕੜਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੱਟ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਣੀ ਲਈ ਅਦਬ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਪਰ ਮਨ ਜਾਗਣ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਗ ਗਿਆ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰੋ ਪਾਠ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੋ ਪਾਠ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੋ ਪਾਠ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੋ ਪਾਠ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦਾ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਉਦਨ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਜਾਗੇ ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇ ਤਰੈ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇ ਸਮਝੇ ਮਨ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਕ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ ਭੈ ਬਾਣੀ ਅਦਬ ਨਾ ਧਾਰਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਈ ਅਦਬ ਤੇ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹਮਾਰਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਨਾ ਵੜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਏ ਨੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ? ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕੀ ਇਸ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ ਜੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਪਏ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਸਿਮ ਸਿਮ ਕੇ ਪੰਗਰ ਪੰਗਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਕੂੜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਬਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੱਖਣ ਇਹ ਘਿਓ ਕਿਉਂ ਸਿਮਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੀ ਇਸ ਕੋਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਹੈ ਇਹ ਘਿਓ ਸਿਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਬਾਅਦ ਸੇਕ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਪੰਘਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜੀ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਭਲਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਥੰਧਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਦ ਵਾਸਤੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਆਵਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਇਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਸੂਝ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੰਗਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲ ਕਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੀਸਰਾ ਮੰਗਲ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚੌਥਾ ਮੰਗਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ 33 ਵਾਰੀ ਮੰਗਲ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਬਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮੰਗਲ ਇਹ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਜਾਂ ਬਚਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੌਪਈ ਤੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਵਾਹਵੈ, ਤਵ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇਰੀ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਰਪਾ, ਚੌਪਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜਲ ਥਲ ਮਈਅਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਕਦੀ ਬਿਣਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਬਣਦਾ ਬਿਣਸਦਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਕਦੀ ਬਿਣਸਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਦੀ ਜਨਮੇ ਨਾ ਕਦੀ ਮੌਤ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਕਦੀ ਝੂਠਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਕਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਤੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤੱਕਣੇ ਆ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਆਪ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਉਹਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਪੁਰਖ ਦਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਨਿਰਭਉ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿਰਭਉ ਵੇ कि सारी दुनिया ओदे पै दे अंदर वड्डे वड्डे सम्राट मेरे मालिक दे चरणा विच होके ओदी आराधना पै करदे ने। जिवें कलगी वाले पातशाह दे बचन पढ़ने आ, त्रै भवन महीप तिन्ना भवना दे राजे सुर नर असुर देवते दैंत मनुख साहब जी कहिंदे ने सुर नर असुर नेत नेत बंतरण कहत ओनू पै किसे दा नहीं, क्योंकि ओ शाहान शाह राजान राज पान आन पान ओ राजियां दा राजा शाह दा शाह है, ओनू किसे दा पै नहीं। ओ किन्ना कु नरपै वे साहब कहिंदे ने कि ध्यान रखी ओ इन्ना नरपौ ते शक्ति वाला है, अमितोज ओदी ताकत नू ओदे बल नू कोई मिल नहीं सकदा। निरपौ ते ध्यान रखना जिथे ओ निरपौ जे ना उथे साहब कहिंदे ने नाल निरवैर। आम तौर ते बंदे नू किसे दा भय ना ना होवे, ओ हर एक नाल वैर कमांदा है, पर मेरा वाहिगुरु ऐसा है जिथे ओ निरपौ वे उथे निरवैर किसे नाल वैर भी नहीं जे कमांदा, किसे नाल कदी उहने वैर नहीं कमाया। निरपौ निरवैर अगे साहब कहिंदे ने अकाल मूरत, काल दा अर्थ समां, इथे काल दे अगे लगा ऐरा अकाल, अकाल दर ते जिदे उत्ते समय दा भी कोई प्रभाव नहीं। अकाल मूर्त साडे उत्ते समय दा प्रभाव है। जन्म सी, जन्म दे नाल ही बचपन है, बचपन तो बाद जवानी है, क्योंकि समय ने प्रभाव पाया, जवानी तो बाद बुढ़ेपा है, समय दे अधीन असी हां, साडे उत्ते समय ने असर करना है, बुढ़ेपे तो बाद मौत है। मेरा वाहगुरु ऐसा है जिदे उत्ते समय दा प्रभाव ही कोई नहीं। अकाल मूर्त ओदा कदी जन्म नहीं, ओ कदी जवान नहीं, ओने कदी बुढ़िया नहीं होना, ओदी कदी मौत नहीं होनी। साहब जी कहिंदे ने अकाल मूर्त, अगला बचन कीता अजूनी, ओ कदी जूना विच नहीं आउंदा, अनेका जूना ने पर रब दी जून कोई नहीं। साहब जी कहिंदे ने सहभंग, सहभंग दर ते ओनू कोई बनाण वाला नहीं, सुते सिद अपने आप ओदा प्रकाश होया, जिन्हू मेरा कलगी वाला कहिंदा अनभव प्रकाश। वो किसे तो प्रकाश उधारा नहीं लेंदा, वो अपने आप विच प्रकाश माने। कमाल दी बात जेड़े गुरुदेव ने इस बचन विच कही, पर दे असी सारे इस मूल मंत्र नू, सतगुरु ने गुण दिसे पूरे नहीं, कुछ कु गुण दे वो एक है, सर्व व्यापक है, ओदा नाम सच्चा है, वो बना के जीव दे विच रहिंदा है, ओनू किसे दा भय नहीं, वो किसे नाल वैर नहीं कमांदा, ओदे ते समय दा प्रभाव नहीं। हजूर कहिंदे ने इथों तक ओ जूना विच नहीं आउंदा, सुते सद अपने आप प्रकाश माने। ते पुछिए गुरु नानक साहब जी फिर ओ मिलेगा किवें, एक सवाल पैदा हुंदा मिलेगा किवें। मेरे सतगुरु ने गुण सारे दसे, पर ए नहीं क्या सिखा एनी कमाई करेगा रब ता मिलेगा। कहन लगे कमाई दी गल छड़, ओनू मिलन दा इको तरीके गुर प्रसाद, जे गुरु दी कृपा हो जाए तां ध्यान रखी ओ मिल सकदा। कमाई दा मान नहीं, तू बंदगी जितनी मर्जी कर पर ओदी कृपा तो बिना नहीं। ध्यान रखना साध संगत गुरु ग्रंथ साहिब विच ओदी कृपा ते निर्भर करदा, अपनी कमाई धरी रह जांदी। हजूर दी बाणी विच दो श्लोक आए ने, एक श्लोक है भगत कबीर साहिब जी दा, ते ओदे नाल ही उत्तर दिता है गुरु नानक जी दी जोत ने। मैं सिर्फ ट्यूक मात्र अर्ज कर रहा, गुर प्रसाद ओदी कृपा जिदे ते मर्जी हो जाए, अपनी कोई चलाकी सियाणप कोई कमाई नहीं, जे कमाई भी करन करानी है तां भी ओदी कृपा है, पर दावा ना करी मिलना उहने गुरु दी कृपा नाल है। कबीर साहिब दा एक शब्द हुंदा है, कहिंदे ने कबीर मेहंदी कर कै घालिया आप पिसाए पिसाए। सलोक कहिंदे ने मैं इन्नी कु कमाई कीती, मेहंदी कर कै घालिया दर ते घाल कमाई करनी, इन्नी कु काल कमाई कीती आप पिसाए पिसाए, जिवें मेहंदी पी के बरीक कर देंदे ने। कहिंदे मैं अपने आप नू इन्ना कु जीवन विच कमाया कि मैं मेहंदी दी तरह अपने आप नू बरीक कर लिया। इन्नी कमाई कबीर मेहंदी करके घालिया आप पिसाए पिसाए। अगे कहिंदे ने तैं शाय बात ना पुछिया, इन्नी कमाई कीती पर प्रीतम तू मेरी गल नहीं पुछी, कबहू ना लाई पाए, मैं मेहंदी दी तरह बरीक बना लिया, पर कदी दात्या मेरी कमाई देख के तू अपने चरणा नाल क्यों नहीं लाया। अगे मेरे सतगुरु उत्तर दिंदे ने, कहन लगे नानक मेहंदी करके रखिया, भावे कमाई तू इन्नी कर ली, मेहंदी दी तरह बरीक हो गया है, पर याद रखी सौ सौ नदर करे आपे पीसे आपे कसे आपे ही लाए ले कमाई नहीं भलिया ए तिरम प्याला खसम का जय पावे तिस दे ए ता ओदी कृपा की पता उन्हें किदे उते मेर कर देनी। साहब किदनो जेड़ा मेरा रब है ना जेड़ा निरभौ वे निर्वैर है वो मिलता है गुर प्रसाद गुरु की कृपा नाल। फिर आरंभता हुई शलोक संस्कृति ये शब्द संस्कृत नहीं आम तौर पर असीं शब्दावली वरतने संस्कृति दे शलोक भाई कान सिंह नाभा डॉक्टर भाई वीर सिंह ने प्रोफेसर साहिब सिंगुरानी दे अर्थ किए ने संस्कृति दे कहिंदे संस्कृत पाली पाली भी एक भाषा है ते तीसरी प्राकृत कह लगे इन्हां तिन्हां भाषावां दे समेल नाल जिहड़ी एक साध भाषा आरंभ हुई उस भाषा नूं कहा गया संस्कृति। संस्कृत नहीं हैगी साध भाषा है ते इसे संस्कृति की भाषा नूं गाथा भी कहिंदे अगे संस्कृति तो बाद एक बाणी आउंदी है गाथा जिहदा पहला शलोक है कर्पूर पोत सुगंधा गाथा का अर्थ भी संस्कृति। प्रोफेसर साहिब सिंगुरां दे मुताबिक शलोक संस्कृति महला पहला महला दरते शरीर पहला दरते गुरु नानक साहब कृपा कर रहे ने की कह रहे ने कहिंदे पढ़ पुस्तक संध्या बादंग आपा एक एक अखर दे अर्थ कर लिए पढ़ दर्थे पढ़दा है पुस्तक पुस्तक दर्थे धार्मिक ग्रंथ पुस्तकां वेद पुराण सिमरतियां साहब कहिंदे ने पढ़ पुस्तक संध्या संध्या का अर्थ विद्वान सज्जन करते ने बड़े रोचक अर्थ किए ने संध्या दर्थ आपा शाम वेला भी करने एक विद्वान ने दे अर्थ किए ने संध्या दर्थ संधि संधि का मतलब जदों रात का ते दिन का संधि का वक्त है जिमें दिन चढ़दा है रात जांदी है लो लगती है उदों भी आपा कहने संधि वेला है दोनों की संधि है ना पूरी रात है ना पूरा दिन। इसे तरह जो शाम पैंदी है ना पूरी रात ते ना पूरा दिन उस संधि दे वेले वक्त नू संध्या कहा ते साहब कहिंदे तू पुस्तकां भी पढ़ना है संध्या भी करना है सवेरे शाम तू पाठ पूजा भी करना है। अगे साहब कहिंदे बादंग बादंग दा अर्थ हुंदा है वाद विवाद करना पुस्तकां पढ़ लईआं ग्रंथ पढ़ लै पर वाद विवाद पिया करना है ते सतगुरु पहला फोकट कर्मां दी गल पै करदे ने पर पुस्तक संध्या बादंग ते मैं अर्ज कीती पढ़ना माड़ी बात नहीं पढ़ के हौमे नूं प्रगटावा करी जाना इहनूं सतगुरु ने परवाह नहीं कीता पर पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजस सिल दरते पत्थर पूजस दरते तू पूजना है सिल पूजस बगुल बगुल दरते बगला समादंग समादंग दरते समाधि लानी पुस्तकां भी पढ़िया लोकां नाल चर्चा भी कीती पत्थर दे सामने तू अखां मीट के बगले दी तरह समाधि ला के भी बैठ गई। साहब कहिंदे ने मुख झूठ जबान तो झूठ इस ढंग नाल बोलना है। साहब कहिंदे ने बेभूखण बेभूखण दा अर्थ हुंदा गहना भूखण दर ते गहना सारंग सारंग दर ते श्रेष्ठ। साहब कहिंदे ने तू अपनी जबान तो झूठ इस तरीके नाल बोलना है तेरा झूठ भी इंज प्रतीत हुंदा है जिवें तू सच कहिंदा हो तू झूठ नूं मुलम्मे दे गहणियां दी तरह पेश करने पर पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजस बगल समादंग मुख झूठ विभूखण सारंग त्रै पाल त्रै दर ते तीन पाल दर ते लाइन पंक्ति। साहब कहिंदे ने त्रै पाल दर ते तिन्ना पालां वाली दर ते गायत्री मंत्र तिन्ना पालां वाला है त्रै पाल। साहब कहिंदे ने तिहाल तिहाल दर ते तीन वक्त प्रभात वेला दोपहर ते शाम। साहब कहिंदे तिन्ने वेले तू गायत्री मंत्र भी पढ़ना त्रै पाल तिहाल विचारंग साहब कहिंदे उहदी विचार भी करना गल माला गले विच माला भी पाईए तिलक ललाटंग ललाट दर ते मथा अपने मस्तक दे उपर तू तिलक भी लाया है दोए धोती अपने नाल तेरे कोल दो धोतियां भी ने बस्तर कपाटंग कपाट दा अर्थ सिर जदों तू पूजा करने ते अपने उपर वाले कपाट नूं भलिया तू कपड़े दे नाल ढक भी लैना ध्यान रखना। इथों तक गल कीती फोकट कर्म कांड दी मैं अर्ज करदिया मेरे गुरु नानक बाबा जिथे पखंड की गल कहणगे ना उथे नाल ए भी दसणगे पठा पखंड की थां ते तू आ कमा लै जज साहब ने कह दिता तू पुस्तक पढ़ी, तू समाधि भी लाई, तू तिलक भी लाया, तू अपने वालों त्रैपाल गायत्री का मंत्र भी पढ़िया। ते सतगुरु कहिंदे ने पर अंदर तां किरदा झूठा ही रखे है, पर इन्हें बाहर कर्मां दा लाभ की होवेगा। यही कारण मेरे कलगी वाले दे बचन असीं रोज पढ़ने आ ना, जदों सुदा सवैये पढ़ने आ अमृत वेले, हजूर कहिंदे ने कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो, पक ध्यान लगायो। की हो गया दोनों अखां बंद करके तू बैठ गया? अखां बंद करनिया बड़ी चंगी गल है, पर विखावे मात्र बंद ना करी। कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो। नात फिरियो लिए सात समुन्द्रन लोग गयो, पर लोग गवायो। बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो, बैस बतायो। ते पुछिए सतगुरु फिर करिए की? कह लगे मैं ए नहीं कहिंदा कि गायत्री माड़ी है, ए नहीं कहिंदा तू पूजा कर रहे ए माड़ी है। बस इको गल चेते रख, साच कहो सुन लेहो सब है, कपटा रख जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। सतगुरु ने अगले जड़े सवैये विच गल कीती, फिर फोकट कर्म कांड दा खंडन कीता। कहन लगे बंदे दी बिरती ही बन गई जिथे कह दिता कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। काहू लै पाहन पूज धरियो सिर, काहू लै लिंग गरह लटकायो। कोई पत्थर नू पूजदा, कोई शिवलिंग गले विच पाई बैठा है। काहू लखे हर अवाची दिशा में, अवाची संस्कृत का शब्द है, अवाची दर से दक्षण वाला पासा। कोई कहता है कि हरि केवल दक्षण वाले पासे रहिंदा है। काहू पिछा को शीश नवायो, कोई कहता दक्षण वाल नहीं रब ता पश्चिम वाल रहिंदा है। साहब जी कहते को बुतान को पूजत है पश, को मृतान को पूजन तायो। असलियत एवे कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। ओही गल मेरा गुरु नानक कर रहा है, पर पुस्तक संध्या बादल सिल पूजस बुगल समादंग, मुख झूट बिभूखन सारंग, त्रैपाल तिहाल विचारंग, गल माला तिलक ललाटन, दो धोती वस्त्र कपाटंग। ते याद रखना केवल पंडित ले नहीं, भेख ना असी भी बड़े जुड़े हैं। गोल पग होवे, गले माला होवे, असी बस भेख नू देख के पिछे भज दौड़ांगे, पर कदी बाबे दे बचन नहीं पड़े। गज साढ़े तह तह धोतियां, तेरे पायन तग गली जिना जप मालिया, लोटे हाथ नबग केवल बाणा नी, ओए हर के संत ना आखिया बाण आरस के ठग। गुरु ग्रंथ साहब ने कमाल कर दिती इस संबंध विच। खैर मैं अर्ज करा अगे तुरा, अगे साहब कहिंदे ने कि प्यारे जिन्नू नाम दी समझ पै गई, जो जानस आसा दीवार विच जे जानस, जो जानस बर्मन करमन, एदा अर्थ है जेड़ा मनुख वाहगुरु जी की प्राप्ति दे भगती दे कर्म नू जानन लग पैंदा है, जिन्नू नाम दी समझ पै जाए। साहब कहिंदे ने सब फोकट निश्चय करमंग, वो एक गल बड़े यकीन नाल कह दिंदा है कि मैं रब दी भगती करना, जेड़े तू बाहर दे आ पखंड करना, एदे नाल मेरा वाहगुरु रीझदा ने। सतगुरु ने तां ही बाणी विच कहा पूजा वर्त तिलक इशनाना, पुन दान बहुदैन गुरु अर्जन साहब राग तनासरी। कहन लगे पूजा वर्त तिलक इशनाना, पुन दान बहुदैन, कहूं ना भीजै संयम स्वामी बोलै मीठे बैन, किवें मिलेगा प्रीतम। साहब कहिंदे ने प्रभ जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजै सब तां को बिखम न जाई लैन। इस तरीके नाल नहीं, साहब कहिंदे ने जो जानस ब्रह्मन करमंग सब फोकट निश्चय, निश्चय चचे ते दुलाइयां ने निश्चय, सह निश्चय दर ते यकीनन जाण्यो, जिन्ने भगती कीती इन्हां कर्मां नू उह फोकट समझदा। अगे साहब कहिंदे ने कहो नानक निश्चौ, इत्थे कनौड़ा है निश्चौ, पहला सी निश्चय यकीनन, इत्थे साहब ने कहा निश्चौ। निश्चौ दा अर्थ श्रद्धा करके, कहो नानक निश्चौ त्यावै, जिहड़ा श्रद्धा नाल भगती करदा ते पुछदा मार्ग नहीं मिलदा। मेरे कहन तो मुराद इस श्लोक दा केंद्री भाव एवे कि सिखा तू बाहर दे कर्म कांड छड़ के ना गुरु के चरणा नू घुट के पकड़ नहीं, ते श्रद्धा इन्नी रखी। अज गुरु हर राय साहब दा पुरब मैं समाप्ति इत्थी करांगा। देखो सिख काबल विच बैठा है, मेरा सतगुरु कीरतपुर बैठा है, अमृत वेले दा दीवान समाप्त हो गया है। लांगरी सिख ने आके बेनती करनी है दाता जी लंगर छको, पर मेरा साईं अज इन्ना जुड़ के बैठा है गुरु हर राय
ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਗੋਇੰਦਾ ਬੈਠਾ ਕਾਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਨੇਤਰ ਮੁੰਦ ਲੈ, ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜ ਲੈ, ਇੰਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਉੱਠਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਚਰਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਕੜੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਸਕਦਾ, ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਪਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਏ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੋਇੰਦੇ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਬਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜ ਲੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।